दिव्यों सज्जनों, स्वामी दयानंद जी के आर्योद्देश्य रत्नमाला से आज का विषय है आश्रम व्यवस्था। पिछली बार हमने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की, वर्ण मतलब क्लास सिस्टम, और बाद में जो कि कास्ट सिस्टम में बाय बर्थ कास्ट के हिसाब से चलने लगा। आज हम समझेंगे कि हमारे संस्कृति में जो आश्रम व्यवस्था है वो किस रूप में थी और आज किस रूप में है और क्या रूप होना चाहिए हमारे लिए भी। तो आश्रम आज आर एक्चुअली द फोर स्टेजेस ऑफ ए ह्यूमन्स लाइफ। सो व्हाट इज एन आश्रम? इट्स ए स्टेज ऑफ लाइफ वेयर वन इज एक्सपेक्टेड टू अचीव गोल्स स्पेसिफिक to that stage and also one has to prepare for the next stage and its goal. हमें expect हमारा जो जीवन है ये आशा की जाती है कि ये 100 साल का जीवन है। एवरेज जीवन 100 साल है, कोई 80 साल जीता है, कोई 70 साल, कोई 110 साल, 20 साल, एवरेज 100 साल का है। तो अगर आपकी प्लानिंग कुछ नहीं है लाइफ के बारे में, जो प्रेजेंट में है आप उसमें बस उसी में रमे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ बड़ा मिजरेबल होता है। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे, वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे भारत में, आईआईटी में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड तो होना होता है सबको। अब रिटायर्ड होने के बाद डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनको पता नहीं कि अब क्या करना है। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, हर देश में दुनिया के ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से रिटायरमेंट लेने के बाद या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2-4 साल के बाद तो बहुत मर भी जाते हैं, या बिल्कुल एक गोललेस एमलेस लाइफ जीते हैं जिसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं। और कभी कभी तो उनका रिटायरमेंट घर वालों के ऊपर बड़ा दुख लेकर आता है क्योंकि 24 घंटे और काम धंधा कुछ नहीं तो किचन में टोको, बच्चों को टोको, उसमें टोको, पूरे घर में टोकते रहते हैं। उनके अपने रिश्तेदार भी बड़े दुखी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है लाइफ का। प्लान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशन था, जो एक सुंदर ट्रेडिशन था जहां बाय नेचर हमारे लाइफ को हम एक प्लान्ड वे में डिवाइड करके जीने की आदत होता था, वो छूट गया। हमारे दादा परदादाओं ने ऐसा नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, तो हमें भी पता नहीं कि क्या करना है। अब ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है कि मैं क्या करूं। अगर समझदार हैं तो आप कुछ प्लान बनाते हैं, नहीं है तो आप करोड़ों लोगों की तरह दुखी हताश होकर के आपके जो लाइफ के जो बाकी 20 25 30 साल बिताते हैं। पर आपको ये गर्व होना चाहिए और आप चाहें तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति में इसकी व्यवस्था बनाई गई थी कि लाइफ को अपने 4 भाग में बांटो और हर जो भाग है, जो डिवीजन है, वो आपके लाइफ का एक स्टेज है और उस स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो और न केवल अपने उस स्टेज की तैयारी करो, नेक्स्ट स्टेज के लिए भी प्रिपेयर करो कि जब नेक्स्ट स्टेज में लाइफ के जाओगे तो तुम क्या करोगे, उसकी प्रिपेरेशन पहले से होगा। ये जो स्टेजेस है और उन स्टेजेस को जीने के लिए जो प्रिपेरेशन है उसको हम आश्रम व्यवस्था कहते थे। और हर स्टेज का अपना कुछ धर्म है, धर्म का मतलब कुछ ड्यूटीज है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ मोरालिटीज हैं, ये सारे मिला के इसको हम धर्म कहते हैं। सो इट ईच इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू दिस फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि हर व्यक्ति को ये चार स्टेजेस से जाना चाहिए। इसके बीच में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना कि सीधे बचपन से सीधे सन्यासी चले गए, शादी के बाद सीधे वाला, कोई अल्टरनेटिव नहीं करना, कोई डायरेक्ट जंप नहीं लगाना। हाँ, जो रेयरेस्ट टू रेयर लोग होते हैं, कुछ करोड़ों में लाखों में एक आधा होते हैं जिनका नेचर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो पैदा इसी ही बड़े वैराग्य में रहते हैं, जिनको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, इवन माँ बाप में बच्चों में किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, दुनिया की किसी भी चीज को वो आनंद नहीं ले पाते हैं छोटे बचपन से ही। इसका मतलब उनके पूर्व जन्मों के संस्कार इतना प्रबल है कि इस जीवन में उनको वो स्टेज बाय स्टेज जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट सन्यास आश्रम को जंप कर सकते हैं। पर वो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे जेन्युइन सीधे बचपन से सन्यासी को और खुद करने वाले जेन्युइन सन्यासी बहुत कम मिलते हैं। और ये जो आश्रम है, ये आश्रम, हर आश्रम अगले आश्रम की तैयारी होती है। ध्यान रखिए, ये आश्रम जिसको हम स्टेजेस कहते हैं, ये लाइफ का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मान लीजिए आप पैसे कमाने में चले, ये भी एक स्टेज है जिसमें आप पैसा कमाना ही है, पर वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। वो पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि उसका यूज आपको कहीं करना है। कभी कभी इसी नासमझी के कारण हम समझ बैठते हैं कि लाइफ में पैसा कमाना ही सब कुछ है, 90 साल का हो गया तो भी कमाता रहूंगा। कुछ लोगों को लगता है लाइफ में खाना पीना ही सब कुछ है, वो कैसी भी परिस्थिति में वो खाते रहना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है एंजॉय करना ही लाइफ है, तो लाइफ में कैसा भी हो पूरी जिंदगी उसी में रहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, लाइफ के बारे में इलिटरेसी जैसी जितनी होगी उतना ज्यादा व्यक्ति अपने लाइफ को रैंडमली यूज करेगा। ट्रेसी ऑफ लाइफ, स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जा सकता। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, पैसा कैसे कमाएंगे, मतलब आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, जो भी बनेंगे, क्या बनेंगे, बनने का मतलब है कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा, दैट्स इट। इसीलिए हम इतने रैंडमली लाइफ में कुछ भी कर बैठते हैं, जहां जो मिलता है कर बैठते हैं, पता ही नहीं कब क्या करना है। ये जो फोर स्टेज ऑफ लाइफ है, उसका जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो होता है ब्रह्मचर्य काल, जिसको आजकल के भाषा में आप कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ। और ये फाउंडेशन है, अगर ये फाउंडेशन आपने डाला नहीं, कमजोर किया, तो आगे के स्टेजेस गड़बड़ हो जाएंगे। सेकेंड है गृहस्थ, जहां आप कमाते हैं, अगर आपने इसको भी कमजोर किया, आगे के दोनों और बेकार होते जाएंगे। नीति शास्त्र में आचार्य लोग कहते हैं, बाल्येन नाधिता विद्या गृहस्थे नार्जितम धनम। जिसने बचपन में, मतलब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा नहीं, गृहस्थ के स्टेज में कमाया नहीं, वार्धक्य किम कर, बुढ़ापा में वो क्या करेगा, कमाने जाएगा क्या कमाएगा, पढ़ने जाएगा क्या पढ़ेगा, लाइफ बर्बाद है। इसीलिए जिस स्टेज में जिसकी जरूरत है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का एज है बचपन से लेकर 20, 22, 25, जो भी, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ योर लाइफ पढ़ाई के लिए है। अब पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्कूलिंग होती है वही पढ़ाई है। सीखना, पैसा कमाने कैसे हैं, खर्चने कैसे हैं, शरीर को ठीक रखना कैसा है, मन को कैसे ठीक रखना है, रिलेशनशिप को कैसे ठीक रखना है, लाइफ को कैसे देना है, ये सब कुछ सीखना स्टूडेंट लाइफ है। फिर गृहस्थ है, जहां आप कमाते हैं उसको खर्च करते हैं, फैमिली बनाते हैं, सोशल बनते हैं। फिर वानप्रस्थ, फिर एक समय आता है जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, क्या करेंगे रिटायरमेंट के लाइफ में। और रिटायरमेंट के बाद फिर आता है संन्यास, जहां आप सोसाइटी से रिटायरमेंट नहीं, इस दुनिया के हर चीज से अपने आप को रिटायर कर देना। मैं मरने की बात नहीं कह रहा हूं, जितने जी भी आप दुनिया से अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। तो ये आश्रमों का अपना एक गोल है। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा करेंगे, आज की भाषा में जिसको आप कहते हैं स्टूडेंट स्टेज, स्टेज ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट ऑफ ये जो स्टेज ऑफ लर्निंग के साथ सेलिबेसी, सेंसेस को कंट्रोल करने का बड़ी जरूरी है। जो लोग पढ़ाई के जीवन में बहुत ज्यादा उच्छृंखल होते हैं, इनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, वो कितने भी स्मार्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, टैलेंटेड हो, आगे जाकर कितने भी बड़े पैसे कमाएं, कितने बड़े पोस्ट पर जाएं, उनका लाइफ मिजरेबल होता ही होता है। बहुत सारे लोगों को आपने हमने देखा होगा, सुना होगा, जो क्योंकि अच्छा पढ़ते हैं, हर चीज में अच्छा करते हैं, तो उनको अपने लाइफ से कोई डिसिप्लिन लाने की जरूरत नहीं समझते हैं। डिसिप्लिन लाने वाले लोगों को बड़ा बेवकूफ और दफियानुस समझते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास टैलेंट है, हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा खेल में है, अच्छा गाने में, सब कुछ अच्छा है, हमें कोई परवाह नहीं पड़ती, लाइफ को अपनी मर्जी से जीते, जो मन में आया करते हैं। उनकी बुढ़ापा को आप देखिएगा, अगर कभी आप ऑब्जर्व करें ऐसे लोगों को, 40 इयर्स ओल्ड में कैसे होते हैं, 50 इयर्स ओल्ड में कैसे होते हैं, 60 इयर्स ओल्ड में कैसे होते हैं, जो अपने स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल इनडिसिप्लिन लाइफ जिया, और जो डिसिप्लिन लाइफ जिया उनका कैसा जीवन होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप कितने भी टैलेंट के साथ आपका लाइफ का कोई लेन देन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप मैथ में एक्सपर्ट है, साइंस में एक्सपर्ट है, लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, डांस में एक्सपर्ट है, पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, उसका आपके लाइफ से कोई लेन देन नहीं है। लाइफ आप एक अपने मैथ से चलता है, उसको आप इग्नोर करें, उसके साथ आप इनजस्टिस करें, तो वो खतरनाक होता है हमारे लिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ए चाइल्ड एंटर्स दिस आश्रम थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ उपनयन सेरेमनी। आजकल आप इसको एडमिशन कहते हो। एडमिशन में आप क्या करते हो, आप स्कूल जाते हो, टीचरों से मिलते हो, एक एडमिशन प्रोसेस होता है, आपको आपके बच्चे को समझाया जाता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। हाँ, अभी 5-6 साल तक आप घर में थे, 2-3-4 साल तक आपकी लाइफस्टाइल अलग थी, माँ बाप के सामने आप सबसे लाडले, सबसे प्यारे, अब स्कूल में आए बहुत कुछ डिसिप्लिन सीखना पड़ता था, वहां माँ दौड़ती थी पीछे 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 पीछे, खाना खाओ, आप मजे ले लेकर के दौड़ते थे, खाना खाते थे, 1 घंटे में एक बार, स्कूल में आए 4 दिन के बाद 5 मिनट में ही पूरा खाना खत्म करना होता है। डिसिप्लिन सीखने सीख जाते हैं, फिर आपको यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपके एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। प्राचीन काल में भी वही था सिस्टम, अलग था, टेक्निकली हम बहुत एडवांस्ड हुए तो हमारा सिस्टम, पर सोच वही है। उपनयन पास जाना गुरु के पास, तो एक सेरेमनी होती थी जिसको उपनयन कहते थे। वो आइडेंटिटी क्या होती थी कि आप एक स्टूडेंट है तो आपके गले में तीन धागों की एक जनेऊ होता था जिसको उपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत कहते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो। इवन पढ़ने के बाद भी ये होता था, मतलब आप पढ़े लिखे हो। जिसके गले में ये है जनेऊ, उसको माना जाता था या तो वो पढ़ाई कर रहा है, अगर छोटा एज का है, बड़ा एज का है तो ये पढ़ा लिखा आदमी है, स्कूल कॉलेज गया हुआ है। जिसके पास नहीं है वो अनपढ़ है, उसी को शूद्र कहते थे। जिसके पास है उसको द्विज कहते थे। द्विज का मतलब होता है जिसका दो बार जन्म हुआ है। पहला जन्म मां के पेट से सबका होता है। जो बच्चा पैदा होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, वो बाय नेचर अज्ञानी होता है। अज्ञानी मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ मैथ साइंस लैंग्वेज का नहीं, उसको ज्ञान ये भी नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता होता है। जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, मतलब जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है, प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ने जाता था, उसका एक नया जीवन होता है। पढ़ा लिखा, समझदार, जो दुनिया को जानता है, खुद को जानता है, वो एक दूसरी, वो एक एक्चुअली मनुष्य का जीवन है। उससे पहले पशु और बच्चों में बहुत कम अंतर होता है जी। पशुओं के बच्चे हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों बड़े प्यारे होते हैं। अब बिल्ली के बच्चे को भी उठा करके तो प्यार करते हो, कुत्ते के बच्चे को भी प्यार करते हो, किसी के भी बच्चे देखो आपको प्यार आता है। वो भगवान की बनाई हुई चीज ऐसी है, वो प्यारे होते हैं। वो भूख में भी रोते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, दौड़ने की, सब एक ही टाइप की है। पर पढ़ाई करने के बाद वो असली इंसान बनते हैं, पशुओं से अलग दिखते हैं। पशु वहीं रुक जाते हैं बचपन में ही, उससे ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम ग्रो करते हैं, और उस ग्रो करने का साधन कौन है? आपका एजुकेशन है। और उसकी सिंबल प्राचीन काल में उपनयन संस्कार था, इसीलिए वो द्विज कहते थे। दो बार जन्म हुआ है, पहले मां के पेट से एक अबोध के रूप में, जस्ट एक पशु के जैसे व्यक्ति के रूप में, और एक गुरु के पेट से जो बिल्कुल समझदार होकर के मनुष्य के रूप में। गुरु के पेट का मतलब आजकल की भाषा में आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जब आप निकलते हैं। तो एज में कोई फर्क नहीं, आजकल भी आप 5-7 साल में ही फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता है, पहले भी वही 5 से 8 साल तक होता था। आज भी आप 14-18 साल तक उम्र तक आप स्कूल में पढ़ते, जिसको आगे पढ़ना है वो 30 साल तक पढ़े, 35 साल तक पढ़े, 25 साल तक पढ़े, पहले भी वही सिस्टम था। मिनिमम इतना पढ़ना ही पढ़ना है, 10-12 साल, तो 14 साल पढ़ना जरूरी है, आजकल 12 साल पढ़ना जरूरी है 12 तक, पहले 14 साल पढ़ना जरूरी, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ना है पढ़ो। पर इतना फर्क है कि आजकल की तरह, वैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंज आया है, एजुकेशनलिस्टों को समझ आया है कि सिर्फ किताबें पढ़ा लेने से बच्चे बच्चे नहीं होते, इसीलिए अब स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन होता है, खेलकूद होता है, ड्रामा होती है, स्पीचेस होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, गाने नाचना होता है, हर तरह की शिक्षा होती है, वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, नैतिक शिक्षा हो, हर तरह की चीजें होती है। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ किताबी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मैथ पढ़ देने से ये जीवन में तो काम नहीं आते हैं, बहुत कम काम आते हैं। आपके जीवन के लिए जो चाहिए वो भी पढ़ना जरूरी है। और ये प्राचीन गुरुकुल सिस्टम वैसे ही होते थे, जहां आपको हर तरह की शिक्षा मिलती थी, और बेसिकली आपके इंद्रिय जय होना जरूरी था। जब आप पढ़ाई लिखाई कर लिया, ग्रेजुएशन आप हो गए, फिर आप जॉब ढूंढते, जॉब करते, फिर उसके बाद क्या होती है कि आप शादी करते। प्राचीन काल में भी वही सिस्टम था, गृहस्थ आश्रम उसको कहते हैं। जब आपकी स्टूडेंट लाइफ या ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया, आजकल आप ग्रेजुएशन करते हैं जहां आपको डिग्रीज मिलता है, फिर आप डिग्री लेकर के उछालते हैं, टोपी उछाल के नाचते, फोटो खींचते हैं, घर में लगाते हैं, फिर भाई ये ग्रेजुएट हो गया, फिर आप जॉब ढूंढते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि टोपी उछाल के फोटो खींचते थे, पर उनका जो फंक्शन होता था तो उसमें गुरु उपदेश देते थे, यहां से जाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है, उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। आपके 16 संस्कारों में से एक संस्कार, फिर वो घर जाता था और अगला नेक्स्ट संस्कार क्या है, विवाह संस्कार। आपको पता है विवाह का एक्चुअल मीनिंग क्या है, विशेष रूप से वहन करना, वहन मतलब बियरिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ढोना, बोझ ढोना। स्टूडेंट लाइफ में आपको आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ड्यूटीज थे, पढ़ो, सीखो, बड़ों को रेस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन में रहो, दीज आर योर ड्यूटीज। शादी का मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि शादी में सिर्फ आपको पति या पत्नी मिल गए, दैट्स इट। अब मां बाप भी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, सोसाइटी भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा, फैमिली मेंबर भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। पहले तो आप ऐसे ही घूमते फिरते थे, आवारा गति, वो लड़का है अभी, लड़की है क्या, बच्चा है अभी। शादी के बाद फिर कोई बच्चा नहीं बोलता आपको, अब 21 साल में भी शादी कर लो तो भी आप बचपन खत्म, 40 साल तक शादी ना करो तो भी आप बच्चा बने रहोगे। विवाह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, संस्कार का नाम ही है विवाह संस्कार। अब से आप रेस्पॉन्सिबल बनोगे। अरेस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके बहुत सारे, आपको बहुत सारे फ्रीडम होगा, आप अपने लाइफ को जी सकते हो, ब्रह्मचारी के तरह नहीं कि आपको चारों तरफ रेस्ट्रिक्शन है, आप फ्री है, आपको आप अपने एंजॉय करो लाइफ को, सेंसेस को प्लीज करो, कोई मना नहीं है। नेचुरली जितना आप रेगुलेटेड वे में करेंगे उतना आपके लिए फायदा, जितना इरेगुलेटेड होंगे उतने आपके लिए नुकसान है, पर आपको छूट है। पैसा कमाओ, खर्च करो, एंजॉय करो, घूमो, पार्टी करो, बच्चे पालो, जो करी करो, पर उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ डेब्ट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। डेप्थ क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में तीन ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। अपने मां बाप के प्रति कर्तव्य बढ़ने लगता है, उनकी टेक केयर करना, उनका ख्याल रखना, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ऐसे ऐसे बुढ़े होते जाते हैं, उनका शरीर क्षीण होता जाता है और आप शक्तिमान होते जाते हैं। तो यह हमारा काम है कि हम उनको ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, कि पितृ ऋण है, उन्होंने आपको पैदा किया, संसार में लाए, इस मनुष्य जाति की प्रगति कराई, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी मां बाप बने, इस नस्ल को, इस रेस को खत्म मत करें। आपके मां बाप बनना, अपने मां बाप की सेवा करना, ये दोनों आपके पितृ ऋण को चुकाने के लिए है। दूसरा है देव ऋण। देव कहते हैं, बहुत बार हमने चर्चाएं की है, देवता मतलब जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, देवोदानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा, मां बाप हो, गुरुजन हो, आचार्य हो, पेड़ पौधे, हवा, पानी, आकाश, जमीन, कोई भी, जिनका भी हमारे ऊपर कुछ ऋण है, उनको चुकाने की कोशिश करना चाहिए। सोसाइटी और ऋषि ऋण, जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान का जो सोर्स है वो भी आपका, उसके प्रति भी आपका एक ऋण है, वो भी आपका डेब्ट है। ऐसा नहीं कि जिस टीचर ने पढ़ा दिया उसी के प्रति डेब्ट है, नहीं, इसने नहीं कहा कि कोई शिक्षक ऋण, आचार्य ऋण नहीं बोला, ऋषि ऋण। टीचर जो पढ़ाता है किसी ने उसको सिखाया होगा ना, जिसको किसी ने सिखाया होगा ना, जो बुक आप पढ़ते हो उसको किसी राइटर ने लिखा है ना, वो राइटर नहीं लिखता तो आप बुक को कैसे पढ़ते, वो राइटर भी कितने हजारों बुक्स पढ़े होंगे ना, उसको लिखने वाले कोई होंगे ना, तो आपको पता नहीं आपके पास जो ज्ञान है वो कितने सोर्स से आया हुआ है। वो सभी सोर्स के प्रति, जो भी ज्ञान के सोर्स हैं उन सबके प्रति आपकी ड्यूटीज है, वो आपका डेब्ट है कि आप उस ऋण को चुकाएं। कैसे चुकाएं? ज्ञान को फैलाने में हेल्प करें, या तो खुद पढ़ाएं या पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन को हेल्प करें, पढ़ने पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस को। देखिए, ये गृहस्थ जीवन के हमारे यहां ये रूल्स थे कि आप शादी कर लोगे ये तीन ऋण तुम्हें चुकाना ही होगा, मां बाप का ख्याल रखना, समाज और प्रकृति का ख्याल रखना, और एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए काम करना किसी भी रूप में, अब इंडिविजुअली पढ़ाओ या इनडायरेक्टली करो, ये तीन ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि। फिर आप पैसे कमाएं, बच्चे रखें, अपने संसार को एंजॉय करें, और फैमिली और सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टैक्स देते हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं, आप मंदिरों के साथ जुड़े होते हैं, आप सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट करते हैं, हर चीज में आपका कंट्रीब्यूशन अब एक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए इसको, गृहस्थ आश्रम को हमारे शास्त्रों में सेंटर ऑफ द सोसाइटी माना जाता है, पूरे समाज का केंद्र माना जाता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी का जो जीवन है वो एक गृहस्थ लोगों के ऊपर टिकता है। इट इज द फेज वेयर ए पर्सन कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द सोसाइटी। आपके जीवन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप इसी समय करते हैं। कैसे करते हैं? मनुस्मृति में लिखते हैं, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् तथैव आश्रमिणा सर्वे गृहस्थे यन्ति संस्थितिम्। As all types of rivers finally draw their support from the ocean, so all the orders like brahmachari, vanaprasthi, sannyasi, etc. draw their maintenance from the order of the household. Agar samudra nahi hote, to nadiyan kahan se hoti? Oceans hain, tabhi aapki cycle of water chalta hai. Surya pani khinchta hai, badal banata hai, badal baraste hain, पहाड़ों में बरसते हैं, जंगलों में बरसते हैं, फिर उसमें स्ट्रीम बनती है, झरनाएं बनती हैं, नदी बनती है। तो जितने भी नदियां हैं उन सबका सोर्स तो समुद्र है, और खाली इतना नहीं, जब नदी बन जाती है तो भी जाकर समुद्र में ही समा जाती है। इसी तरह समाज में जो बाकी तीन स्टेज हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट्स लाइफ, वानप्रस्थ आश्रम रिटायर्ड लाइफ, संन्यास आश्रम लाइफ ऑफ रिनुंसिएशन, जब आप सब कुछ त्याग देते हैं, इन तीनों का भरण पोषण की जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम का हुआ करता था। वो आजकल की तरह सन्यासी या वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी नहीं होते थे, रिटायर्ड मतलब 100% रिटायरमेंट। किससे? पैसा कमाने से। पर काम उनकी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, उससे ज्यादा चलेगा। रिटायरमेंट फ्रॉम अटैचमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। काम तो करते रहेंगे, खाएंगे कैसे, कमा तो नहीं रहे, अब समाज की सेवा में लगे रहेंगे, तो जहां भूख लगे किसी के घर में पहुंचेंगे, खाना खिलाओ। तो गृहस्थ लोगों का यह कर्तव्य होता था कि वो उनको खाना खिलाएं, रिस्पेक्ट करें, कोई जरूरत चीजें हो तो दें। इसी तरह सन्यासी का भी, ब्रह्मचारी का भी, सबका, आज भी आप लोग करते हैं। जब आप कमाने लग जाते हैं, शादी करते हैं, वैसे भी कमा करके जो शादीशुदा नहीं है आप देखेंगे उसकी चैरिटी बहुत कम होती है, डोनेशन कम होता है, वो नेचर ही नहीं बनता फैमिली को, सोसाइटी को पार्ट ऑफ आवर लाइफ समझना, वो बैचलर लाइफ में कम आता है क्योंकि केयरलेस लाइफ है, वो गृहस्थ आश्रम में आता है। इसीलिए कहा विवाह रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ और पांच ड्यूटीज उसके होते हैं नेचुरल ड्यूटीज। ऐसा नहीं कि कोई आप पर थोप रहा है, आप नहीं करेंगे सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं पंच महायज्ञ, जो यज्ञ आप करते हैं ये तो एक यज्ञ है, पर हर गृहस्थी को शादीशुदा आदमी को पांच यज्ञ करने का विधान है। ब्रह्म यज्ञ, देखिए सिंपल है, डरने की बात नहीं है। क्या कहा कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ो, ये एक यज्ञ है जी देवियों सज्जनों, और पढ़े कौन, मंदिर में दान दे देंगे जितना पुण्य मिलेगा मिलेगा, ये पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, पढ़ाई हमने बहुत कर ली पैसा कमाने के लिए, आप नहीं कुछ पढ़ते। आप देखेंगे आपके अगल बगल में आपके घर में बड़े एजुकेटेड लोग हैं, लाइब्रेरी भरी होगी ड्राइंग रूम में बिल्कुल, वो तो किताब उठाएंगे बिल्कुल एक पन्ना भी नहीं पलटा होगा शोकेस। पढ़ना एक लाइफ लॉन्ग काम है, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। तैतिरीय उपनिषद में गुरु जब ब्रह्मचारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है जब शादी करने जाता है तो उसको बहुत सारे उपदेश देता है, ग्रेजुएशन के उपदेश उसको कहते हैं। उसमें से एक उपदेश गुरु बार बार रिपीट करता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, नेवर नेग्लेक्ट योर सेल्फ स्टडी, मरते दम तक भी पढ़ते रहना। अब पढ़ने के नाम पर अगर आप अपनी प्रोफेशनली प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए कुछ पढ़ते हैं उसको पढ़ाई नहीं मानी जाती है, वो तो आपकी कमाई धमाई का साधन है, वो पढ़ाई नहीं है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अलग पढ़ाई है, वो आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसको कोई मना नहीं करता है। उसमें आपको जो डेवलपमेंट करना है करते रहो, पर डोंट काउंट इट एज योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब जहां आप खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। डेफिनेशन है सत शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे शास्त्रों का, ऐसे किताबों का पढ़ना जिसमें रियलिटी के बारे में डिस्कशन हो, बातें हो, जिसमें ट्रूथ फाइंडिंग के बारे में बातचीत हो। कोई भी बुक पढ़िए, प्रोफेशनल बुक को नहीं। और ये यज्ञ है। दूसरा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करना। भक्ति आप कैसे भी करें, प्राचीन काल में संध्या होती थी, सुबह और शाम जब दिन और रात का मिलन होता था, दोनों समय को संधि कहते हैं, संधि मतलब यूनिटी। उन दोनों टाइम पर व्यक्ति रात दिन के शुरू में, रात के शुरू में व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता था, उसकी जो स्टैंडर्ड वे था उसको संध्या कहते थे। पर जरूरी नहीं हर कोई स्टैंडर्ड वे फॉलो करे, कोई भी रास्ता अपनाए, पर ईश्वर के लिए कुछ समय निकालें, ईश्वर भक्ति करें। जहां उसका शब्द है ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब होता है जहां आप कुछ मंत्र पढ़े नहीं, कोई भजन गाए नहीं, जहां आप अपने आप को सरेंडर करने के लिए कुछ करें, फिजिकली नहीं मेंटली आप ऐसा प्रैक्टिस करें कि आप कुछ भी नहीं हो वही सब कुछ है तुम्हारा। ये मेंटली प्रैक्टिस करना कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे शरण में हूं, मैं तो कुछ नहीं निमित्त मात्र हूं, ये प्रैक्टिस करना मेंटली, दैट इज कॉल्ड भक्ति, ईश्वर प्रणिधान। सबको करना चाहिए गृहस्थ जीवन में, टाइम नहीं मिलता सुबह शाम तो कभी भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मंत्र बोलें, हवन करें, थोड़ी देर बैठ के अपने आप के बारे में सोचें। शरीर नहीं, आपकी लाइफ क्या है, कहां से आया, कैसे आया, जाएगा तो मरने के बाद कहां जाएगा। जब ये सब सोचने लगेंगे, अपने आप को, अपने आप आपको ईश्वर की ओर झुकाव होने लगेगा। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। हर गृहस्थी को करने की जरूरत है। कुछ पढ़ें, ईश्वर के प्रति भक्ति करें। दूसरा कहा देव यज्ञ, जो आप हवन करते हैं। हवन क्यों देव यज्ञ है? देव का अर्थ मैंने अभी बताया, जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है। पूरा नेचर जो है वो देव है, पेड़ पौधा हवा पानी पशु पक्षी माँ बाप सब। माँ बाप के लिए तो अलग से सेवा की व्यवस्था है, तो उसमें हम देव से काट देते हैं। आचार्य वगैरह सबके लिए, मनुष्यों के लिए जो भी कैटेगरी है वो हट जाने के बाद जो बच गए, कौन बच गए? ईश्वर भी देव है, पर ईश्वर के लिए अलग यज्ञ हुआ ब्रह्म यज्ञ। माता पिता भी देव है, पर उनके लिए अलग यज्ञ है पितृ यज्ञ। जो नेचर में बच गया, उस नेचर को प्रोटेक्ट करना, उसका केयर करना, ये हमारा कर्तव्य है। और उनमें से बहुत सारे तत्वों में से एक तत्व है कि रोज अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, सही प्रकार से जो शास्त्रीय व्यवस्था है, कैसे लकड़ी होनी चाहिए, कैसा घी होनी चाहिए, कैसी सामग्री होनी चाहिए, कितने तरह की सामग्री होनी चाहिए, किस तरह के आग जलनी चाहिए, पूरी व्यवस्था और भक्ति के साथ आपको रोज यज्ञ करना चाहिए। रोज नहीं तो अमावस्या पूर्णिमा में कर सकते, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं। और रोज जो हवन होता है वो 7 से 8 मिनट का होता है, केवल 7 से 8 मिनट का हवन होता है। तो सत्संग में हवन होता है उसका कोई लेन देन नहीं है आपके दैनिक, ये तो एक अलग पब्लिक को सिखाने के लिए समझाने के लिए होता है। इसका एक टाइम बाउंड है, 30 मिनट के अंदर आपको सब कुछ कराना है। उसमें बहुत कुछ चीजें होती है नहीं होती, ये कोई आइडियल है ऐसा नहीं है। पढ़ना है तो संस्कार विधि स्वामी दयानंद जी का पढ़ें, वायुमंडल को शुद्ध करें, जल को शुद्ध करने के लिए, मेघ बादल को शुद्ध करने के लिए हवन की यज्ञ की व्यवस्था थी। तीसरा ड्यूटी बताया कि पितृ यज्ञ करें। पिता माता दोनों को पितृ कहते हैं, पितरौ, अंग्रेजी में आप पेरेंट्स बोलते हो, ये पेरेंट्स भी पितृ शब्द से बना हुआ है, मतलब माता पिता दोनों। माता पिता की सेवा करना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनके बुढ़ापा में उनकी ख्याल रखना, उनको पार्ट ऑफ आवर फैमिली समझना। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, फैमिली मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। मेरी शादी होने के बाद, जो पहली बार मैं शादी होने के बाद जो लोग मिले, तो मुझे पता नहीं था कि फैमिली मतलब इतनी होती है। तो लोग पूछते थे, और कैसी है आपकी फैमिली, कौन सी फैमिली? तो सब वहां उड़ीसा में है। नहीं, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? उसके बाद मुझे पता चला कि फैमिली का मतलब सिर्फ बीवी, बच्चे नहीं है तो सिर्फ बीवी और आप, बच्चे हो गए तो बीवी बच्चे आप, फिर माँ बाप कहां चले गए? ये हमारी माइंडसेट बन चुका है, अलग कर देना उनको फैमिली से, मेंटली अलग कर देना कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ माई फैमिली। थोड़ा सिविलाइज्ड वे में, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वे में बोलते हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली है। माँ बाप कब से एक्सटेंडेड फैमिली हो गए? पर हो गए मेंटली, हम पढ़े लिखे हुए तो एक्सटेंडेड हो ही जाते हैं। पितृ यज्ञ, माँ बाप की सेवा करना, उनको रेस्पेक्ट करना, पार्ट ऑफ लाइफ समझना, ये पितृ यज्ञ और हर गृहस्थ को करने की जिम्मेदारी बताई। अतिथि यज्ञ, या दूसरे शब्द में उसको हम नृयज्ञ कहते हैं, बाकी मनुष्यों की सेवा करना। मां बाप हो गए, सेवा किया, बाकी जो रह गए, कोई भी व्यक्ति जिसका समाज प्राचीन काल में, जो जैसे अभी हमने सुना, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वो सब सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। ब्रह्मचारी तो मतलब स्टूडेंट तो सबके बच्चे तो एक जैसे होते हैं, गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां कोई ना गवर्नमेंट एड मिलता था, राजाओं का कोई एड वो लेते थे, ना पब्लिक का कोई डोनेशन लेते थे। गुरु अपने खर्च से गुरुकुल चलाता था, किसी से बिना कोई हेल्प लिए, क्योंकि हेल्प लेने का मतलब सरेंडर करना, उनकी मर्जी से अपनी संस्था चलाना और भिक्षा से गुजारा करते थे। भूख लगेगा तो अपनी खेतीबाड़ी जो होती थी या तो आसपास के गांव जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे। भिक्षा को आजकल, क्योंकि अब आजकल गंदे लोग भीख मांगते हैं इसलिए बुरे शब्द में यूज होता है, ये गृहस्थ लोगों का कर्तव्य होता था कि जब आपके घर में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी आए तो वो उनको सेवा करे, इसी को कहते हैं अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब जो आजकल आप समझते नहीं कि गेस्ट आया उसको आप रिस्पेक्ट करें, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी है जी। आपके चाचा आपके घर आए और आप सेवा नहीं करेंगे तो आप उनके घर में जाएंगे तो वो भी आपको भगा देंगे, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई आपको मोरल ड्यूटी नहीं है कि आप करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी है। उस गेस्ट की सेवा करने की बात ये नहीं कह रहा है कि मामा आ गए, चाचा आ गए, अंकल आ गए, आंटी आ गए, कजन आ गए तो वो हमारे गेस्ट है, नहीं, उनको गेस्ट नहीं काउंट करते हैं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, शास्त्र ना बताए तो भी जरूर जबरदस्ती करेंगे, आपको भी तो उनके घर जाना है ना, उसकी बात नहीं कर रहे, उनकी बात कर रहे हैं जहां आपको लगता है इनसे मेरा क्या, पर आपको करना चाहिए, वो है। प्राचीन काल में जो वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लोग होते थे, जो समाज सेवा में लगे रहते थे, सन्यास जो आत्म कल्याण में लगे रहते थे, या ब्रह्मचारी जो खुद को तैयारी में लगा रहता था, आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आश्रम व्यवस्था को लैप्स्ड हो चुका है। पर कंटेम्प्रेरी वे में समझना हो अतिथि यज्ञ क्या है, अतिथि कौन है, कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी समाज की सेवा में लगा हुआ है, कम्युनिटी की सर्विस में लगा हुआ है, वो व्यक्ति हो, वो समाज हो, वो संगठन हो, वो सब अतिथि की कैटेगरी में आते हैं। उनको हेल्प करना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनके साथ जुड़ना, ये अतिथि यज्ञ है। अब वो आजकल घर में भी नहीं आने वाले हैं, क्या दरवाजा भी नहीं खोलने वाले हो, फोन करके अपॉइंटमेंट नहीं हो तो कौन खोलेगा, अब सोसाइटी बदल चुका है, कोई अच्छी बुरी बात की चर्चा नहीं है, सोसाइटी बदल चुका है। आपके घर में अपने आप अचानक तो कोई आने वाला नहीं है, आएगा भी तो कोई खोलने वाला नहीं है, डर लगता है चोर आ जाएगा, डकू आ जाएगा। अब अतिथि यज्ञ है कि आप उनके पास जाएं, जो व्यक्ति समाज की सेवा में लगा है, वो इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको डोनेशन देना, चैरिटी करना, उनके साथ जुड़ना, उनको हेल्प करना, वॉलंटियरिंग करना, ये सब अतिथि यज्ञ है। अगला है भूत यज्ञ। भूत मतलब आपने ईश्वर की सेवा की, वो है ब्रह्म यज्ञ, और आत्मा की सेवा की स्वाध्याय के द्वारा, आपने देव यज्ञ के द्वारा नेचर का ख्याल रखा, पितृ यज्ञ के द्वारा माता पिता का ख्याल रखा, अतिथि यज्ञ के द्वारा बाकी सभी सेल्फलेस लोगों का ख्याल रखा, रह गए कौन, आपके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े। अब सारे दुनिया के पशु पक्षियों की सेवा तो नहीं कर सकते, पर आपके आसपास घर के आसपास जो भी पशु पक्षी थे हैं उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, अगर वो किसी पेड़ पर बैठे हैं उनको न काटना, वैसे इंतजाम करना कि वो उनकी उनका घर ना उजड़े, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको दाना देना, ये भूत यज्ञ होता था। आजकल इसका बिगड़ा हुआ रूप भारत में थोड़ा बहुत आप देखते हैं, शहरों में कहीं कहीं कबूतरों को दाना डालते हैं, वो उस भूत यज्ञ का एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। और ये पांचों के पांचों गृहस्थ के लिए जरूरी माना जाता था, अनलेस इन एक्सेप्शनल केसेस वन इज नॉट परमिटेड टू बाईपास दिस आश्रम। और इस गृहस्थ आश्रम का इतना महत्व है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे एक्सेप्शनल केस ना हो, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, कोई रेयरेस्ट केस ना हो, इसको इग्नोर करके आगे जंप नहीं करना चाहिए। अगले बार हम समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम क्या होता है। और ये बहुत जरूरी दोनों आश्रम है, खास करके वानप्रस्थ आश्रम। जो रिटायरमेंट लेते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और जो अभी यंग है उनको ये प्लानिंग करने की जरूरत है कि उनका रिटायर्ड लाइफ कैसा होना चाहिए। जब अगर वानप्रस्थ आश्रम को ठीक से समझेंगे तो जो काम करते हैं वो अपने रिटायर्ड लाइफ को समझ सकते हैं कि उसके लिए क्या प्लान करें, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी भी गोल लेस हैं, घर में बीवी को तंग करते हैं या बाहर दुनिया को तंग करते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि कैसे लाइफस्टाइल जीना है। इसी के साथ यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।